ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரசித் வேதாந்த டிண்டிமா இஸ் ஸ்தோத்திர கே ஆதார் பர் வேதாந்த விசார் சல் ரஹா ஹை. அபியாஸ் கே லியே 31வா ஸ்லோக் ஹோகா. அவித்யோபாதிகோ ஜீவோ மாயோபாதிக ஈஸ்வரஹ மாயா வித்யா குணாதீதஹ இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சாகாரம் ச நிராகாரம் நிர்குணம் ச குணாத்மகம் தத்துவம் தத் பரமம் ப்ரஹ்ம இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. த்விஜத்வம் வித்யனுஷ்டான விப்ரத்வம் வேத பாடதஹ ப்ராஹ்மண்யம் ப்ரஹ்ம விஜ்ஞானா இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சர்வாத்மனா ஸ்திதம் ப்ரஹ்ம சர்வம் ப்ரஹ்மாத்மனா ஸ்திதம் ந காரியம் காரணாத் பின்னம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சத்தா ஸ்புரண சௌக்யானி வாசந்தே சர்வ வஸ்துஸு தஸ்மாத் ப்ரஹ்மமயம் சர்வம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. அவஸ்தாத்ரயாதி அவஸ்தாத்ரிதயம் யஸ்ய க்ரீடா பூமிதயா ஸ்திதம் ததேவ ப்ரஹ்ம ஜானீயாத் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. யன்னாதௌ யச்ச நாஸ்த்யந்தே தன்மத்யே மாதமப்யசத் அதோ மித்யா ஜகத் சர்வம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. बड़ा ही सुंदर विचार चल रहा है. जब शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो स्वतः ये जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा बढ़ती है. वास्तव में जीव है क्या चीज, और ईश्वर है क्या चीज, ईश्वर कैसा होगा, क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कहां रहता होगा, ये सारी चीज जानने की इच्छा बढ़ती है. इसी को जिज्ञासा बोलते हैं। अब ये चीज आप हम साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते, तो कोई सर्वज्ञ होगा वो इस बात को अच्छी तरह समझता है। तो उन्हीं से पूछना पड़ता है, उन्हीं के पास जाकर उन्हीं से ही पूछना पड़ता है, महाराज ये जीव है क्या चीज। आंखों से जैसा दिख रहा है ऐसे ही है कि इससे भिन्न है? आंखों से जो दिख रहा है वो तो जीव नहीं दिख रहा है, जीवों का शरीर दिख रहा है। तो लोग कहते हैं कि जीव में भिन्न भिन्नता, किसी के सिर में लंबे लंबे सींग, किसी के पीछे लंबे लंबे पूंछ, ये क्या बला है। और हमको जीव कहेंगे कि शिव कहेंगे? हमारे यदि जीव कहेंगे तो भैंस को क्या कहेंगे? उसके सिर में लंबे लंबे सींग है भाई, हमारे तो सिर में सींग है ही नहीं। हाँ, ये अलग चीज है कि हम भैंस नहीं है, भैंस हम नहीं है, लेकिन हम जीव हैं और भैंस भी जीव है, इसमें कोई दोराय नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। भैंस भी जीव है और हम भी जीव हैं, क्योंकि जीव का शरीर के साथ कोई परिभाषा नहीं हो सकता है। जीव क्या है, इस प्रश्न का उत्तर शरीर को लेकर परिभाषा नहीं की जा सकती, अन्यथा जीव में प्रकारांतर प्रकारांतर अलग अलग होंगे। जबकि वेदांत ये कहता है जीव मात्र एक ही क्वालिटी के हैं। तो फिर ये शास्त्र में 84 लाख योनि ये जीव के बोलते हैं क्या है? यही रहस्य है वेदांत के द्वारा जानने योग्य। वेदांत की दृष्टि यह है कि जीव एक ही है, एक ही प्रकार का है। जिसको 84 लाख कह रहे हैं वो तो जीवों के शरीर के प्रकारों का है, जीव के प्रकार नहीं है। शरीर जीव के शरीर के प्रकार हैं 84 लाख। हमारा इस ढंग का शरीर है तो दूसरे का दूसरे ढंग का, तीसरे का तीसरे ढंग का, चौथे का चौथे ढंग का। वेदांत का ये कहना है कि शरीर के प्रकार के चलते जीव के प्रकार नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए मिठाई के क्वालिटी के चलते मधुरता का क्वालिटी डिफरेंस नहीं माननी चाहिए। मिठाई हो सकता है, उसके क्वालिटी आकार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम मिठाई कहते हैं उसमें नीम का पत्ता पड़ेगा कि नहीं है? जब हम मिठाई शब्द प्रयोग करते हैं तो उस आइटम में नीम का पत्ता या नीम का रस पड़ेगा कि नहीं? मिठाई तो मिठाई है। पेड़ा कहते हैं, बर्फी कहते हैं, जलेबी कहते हैं, कलाकंद कहते हैं, इमरती कहते हैं, ये डिफरेंस अलग अलग होने पर भी मधुरता में भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार के जीवों के शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी जीव ये भिन्न भिन्न नहीं है। तो क्या महाराज, ये जीव बनता कैसे है? कलाकंद कैसे बनती है? तो किसी हलवाई से ही पूछना पड़ेगा। संदेश कैसे बनता है? हलवाई से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन जीव कैसे बनता है, किसी हलवाई जवाब नहीं देगा। वो तो किसी संतों से ही पूछना पड़ेगा। संत ही इसका जवाब दे सकते हैं, जीव कैसे बनता है। जब आप जीव के बनने की प्रक्रिया से अवगत होंगे, तब जाकर जीव का जो रहस्य है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अरे, जीव तो ऐसा बनता है, कुछ नहीं है। किसी पंजाबी को कहो कि फजे तो कैसे बनता है, तो क्या बताएगा वो पंजाबी? क्या बताएगा वो पंजाबी? उसको आश्चर्य लगता है कि फजे तो क्या है भाई। तो उसको समझाया जाना पड़ेगा कि फजे तो एक डिश है, एक खाने की चीज है, भोजन का आइटम है, तो कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो वो तो किसी एक गुजराती बहन से ही सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गुजराती भाई भी नहीं बता पाएगा शायद, गुजराती बहन से ही सीखना पड़ेगा। जब उसके फॉर्मूले बता दिया जाता है कि अरे ऐसे बनता है, कैसे बनता है, बोले पहले आम लाओ, निचोड़ो, रस निकालो, अलग करो, चीनी डालो, केसर डालो, अलग बना के रखो, बचा हुआ छिलका और गुठली होता है उसमें पानी डाल के फिर धो लो, नमक मिर्ची डाल के जीरा का छौंक लगा दो, हो गया। अरे ऐसा बनता है फजीता, ये तो कुछ भी नहीं है। ले भाई, तो फजीता यदि कुछ नहीं है तो फिर जीव क्या है? फजे तो कुछ नहीं है, फिर जीव क्या है बोला? तो वेदांतियों से पूछोगे तो जीव की प्रक्रिया सब बता देगा, तो तुम्हें खुद लगेगा अरे ये जीव तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खास महत्व तो नहीं है। तो जब जीव के बारे में तो आप समझ जाओगे तो फिर ईश्वर के बारे में जिज्ञासा होगी कि ईश्वर कैसे बनता है। देखो, वेदांत सिद्धांत है, ब्रह्म वायक जितने नाम लेते हो तुम वो सब बने हुए हैं। ब्रह्म वायक, परमात्मा वायक, बाकी सब बने हुए हैं। और बने हुए हैं यही कारण है कि सभी में बनावटी है, क्योंकि बने हुए हैं इसलिए सभी में क्या है, बनावटी है। जीव बना हुआ है तो जीव बनावटी है कि नहीं? बनावटी का अर्थ होता है डुप्लीकेट। ये शब्द प्रयोग होता है ना व्यवहार है, ये तो बनावटी है, इसका मतलब नकली है, वास्तविक नहीं है। तो फिर ईश्वर क्या है महाराज? तो बोले वो भी बनावटी है। फिर ईश्वर का बनाने का, ईश्वर बनने का फॉर्मूला क्या है? तो जैसे आपने फजेतो बनाने का फॉर्मूला जाना, उसी तरह आमरस बनाने की फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि नहीं? सिस्टम वही है। आम रस में बिल्कुल मधुरता है और फजेतों में खट्टा मीठा है, मिर्ची नमक भी है। आम रस में मिर्ची नमक तो नहीं है ना, मसाला तो नहीं है ना, प्रक्रिया वही है। आमरस में पानी नहीं डाला है, खाली आम को निचोड़कर बना दिया और चीनी डाल दिया, और फजेतों में पानी डाला। इसी तरह जीव और ईश्वर एक ही मेटेरियल से बना है, आमरस और फजेतो एक ही मेटेरियल से बना है। गुजराती लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसी तरह जीव और ईश्वर एक ही मेटेरियल से बना है, चेतना का भाग भी एक ही है, सेम है, और जिस उपाधि से जीव बना और जिस उपाधि से ईश्वर बना, उपाधि का जो भाग है वह भी एक ही है। फिर फर्क क्या है महाराज? तो फर्क थोड़ा सा है, वो चीज इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अविद्योपाधिको जीवो मायोपाधिक ईश्वरः माया विद्या गुणातीतः इति वेदांत डिंडिमः। अंदर का भाग थोड़ा सा बाहर की अपेक्षा अंधकार रहता है, और बाहर अंदर की अपेक्षा ज्यादा रोशनी रहती है दिन में। हाँ, ये स्वाभाविक है कि नहीं बोलो? है, चाहे कितने ही दिन का मध्य हो, जब आप अंदर और बाहर की परिभाषा करते हो तो बाहर की अपेक्षा अंदर थोड़ा सा रोशनी मंद कम हो जाता है, और अंदर की अपेक्षा रोशनी ज्यादा बाहर, स्वाभाविक ही है। इसी तरह एक ही माया के अविद्या का भाग और विशुद्ध सत्व का भाग, एक ही माया के दो भाग हैं। वस्तु एक ही है जिसका नाम माया, उसका ये दो भाग हैं। वो एक मलिन सत्वता, पंचदशी की भाषा में मलिन सत्व, और दूसरा विशुद्ध सत्व। यहां के भाषा में मलिन सत्व को ही यहां अविद्या ये शब्द से कह दिया गया है, और विशुद्ध सत्व को ही यहां माया शब्द से कह दिया गया है। अविद्योपाधिको जीवः, शुद्ध जो चेतना है, शुद्ध चैतन्य चेतना, उसका जब मलिन सत्व अथवा अविद्या में प्रतिबिंब पड़ता है तो उपाधि के सहित प्रतिबिंब का नाम, प्रतिबिंब सहित उपाधि का नाम या उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम, उपाधि और उपाधेय, प्रतिबिंब और जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो दोनों अभिन्न हो जाएंगे, दोनों का तादात्म्य हो जाएंगे। ये दोनों का एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म एक में आ जाएगा। इसी को संसर्गाध्यास शब्द से शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा, इसको संसर्ग अध्यास, धर्म धर्मी अध्यास, एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म एक में, चेतना में जब उपाधि के धर्म आ जाते हैं और उपाधि में जब चेतना का धर्म चला जाता है, जैसे अयोगोलक आग का गोला है, ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो यहां होता क्या है, संसर्ग अध्यास है, अग्नि का और लोहे का ये संसर्ग हो गया, तो लोहे का धर्म गुरुत्व आकार प्रकारत्व अग्नि में चला गया, तो अग्नि कैसे दिखने लगा, गोल, अग्नि कैसा हो गया, वो जड गुरुत्व, और अग्नि का धर्म दाहकता लोहे में चला गया, लोहे का जो वजन है अग्नि में आ गया, लोहे का जो गोलापना है अग्नि में आ गया, अग्नि की जो दाहपना है वो लोहे में चला गया, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, अयोगोलक हो गया। इसी तरह अविद्या का धर्म जीव में आ गया, यानी चेतना में आ गया, और चेतना का धर्म उपाधि अविद्या में चला गया, तो दोनों का तादात्म्य होगा, दोनों का संसर्ग हो गया, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, जीव ये नाम पड़ा है, दोनों मिलाकर क्या हुआ, जीव ये संज्ञा हुई है। अविद्योपाधिको जीव, और फिर ईश्वर क्या हुआ, कैसे हुआ, ईश्वर कोई दूसरे मसाला से बना है ऐसा नहीं समझ लेना, ईश्वर किसी और मसाला से बनाया हुआ है ऐसा नहीं समझ लेना, ब्रह्मा जी ने जब भैंस बनाई तो भैंस बनाने के लिए कोई और मसाला प्रयोग किया, मटेरियल, और मनुष्य बनाई तो मनुष्य बनाने लिए कोई और मसाला प्रयोग किया, ऐसा नहीं समझ, मटेरियल तो वही है, पंचभूत है, जिन पांच महाभूतों से भैंस का शरीर बनाया वही पांच महाभूत से तुम्हारा शरीर बना है, तो भैंस में और तुम्हारे में अंतर क्या है महाराज, मसाला तो वही है भाई, मटेरियल तो वही है, अब इसी तरह उस भैंस को चलने फिरने वाला, खाने वाला, उठने वाला, बैठने वाला बनाने के लिए चेतना चाहिए, है ना, ब्रह्मा ने उसमें चेतना कहां से लाकर डाली, ब्रह्मा ने, भैंस निर्माण करने वाला कर्ता ने उस पांच महाभूतों से भैंस का स्ट्रक्चर बनाया, और वो तो फिर खड़ा का खड़ा रह गया, जैसे आप मूर्ति बनाते हो, वो खाने वाला, देखने वाला, घूमने वाला, पीने वाला, घास खाकर दूध देने वाला बनाना पड़ेगा कि नहीं, है? तो वो कैसे होगा, तो बोले वो चेतना डाल दिया, वो चेतना लाया कहां से, ब्रह्मा ने, ब्रह्म से, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म में से चैतन्य डाल दिया उसमें, परिणाम क्या हुआ, भैंस खाने पीने, घूमने फिरने, देखने, उठने बैठने सब करने लग गया। इसी तरह मनुष्य बनाइए तो जिस उपादान कारण पंच महाभूत को लेकर मनुष्य का मूर्ति बनाया, तो वो भी वो भैंस की मूर्ति जैसे, अब इसको भी चलता फिरता बनाना पड़ेगा कि नहीं, है? जैसे भैंस को चलता फिरता बनाना पड़ा तो उसके लिए क्या किया, चेतना का भाग लेकर डाल दिया। इसी तरह अब ये मनुष्य के मूर्ति, इसको भी चलता फिरता हंसने वाला, खेलने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, माया प्रेम करने वाला, नफरत करने वाला, ये सारी चीज बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, इसमें भी चेतना चाहिए। तो वो चेतना लाया कहां से, जहां भैंस बनाने के लिए चेतना लाया था वहीं से वो जीव मनुष्य बनाने के लिए चेतना वहीं से लाया, कोई फर्क नहीं है भाई। फिर फर्क क्या है, तो थोड़ा फर्क है। हाँ, ब्रह्मावलोक अधिषणम मुदमापदेवा, थोड़ा सा इसमें ये बुद्धि का भाग कुछ स्वच्छता आ गई। भैंस ने बनाने के बाद ब्रह्मा को धन्यवाद नहीं कहा तो वो भैंस का भैंस ही रह गया। क्या बोला? बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं तुमको। भैंस ने बनने के बाद घास चरने लगा, घूमने फिरने लगा, सब कुछ करने लगा तो ब्रह्मा की तरफ देखकर धन्यवाद नहीं कहा उसने, तो क्या रहा, वो भैंस का भैंस ही रह गया। और तुम हमने क्या कहा, उसके तरफ मुंह करके धन्यवाद कहा। इतने ही मनुष्य का फर्क और कुछ नहीं है। यदि तुम उसको क्रिएटर को, निर्माता को धन्यवाद न कहोगे तो क्या कहोगे बोलो? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। हाँ, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, भर्तृहरि महाराज ने लिख दिया है। एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तुम धन्यवाद भी नहीं दे सकते हो, क्यों कंजूसाई करते हो? क्या जाता है धन्यवाद देने में? उस परमात्मा को एक बार धन्यवाद तो कर दो, वो इतनी से खुश हो जाएगा, थैंक्स, बस वो मक्ख हो गया, मस्त हो गया। मनुष्य की विशेषता यही है कि क्रिएटर को, उस परमात्मा को एक बार धन्यवाद या जीवन भर धन्यवाद कहो, इतना ही फर्क है, अन्यथा कोई फर्क नहीं है। हम वेदांती तो फर्क नहीं मानते हो, आप लोग फर्क मानते हो तो मानो। हम वेदांती तो भैंस में और हम में कोई फर्क नहीं है, आगे बता दिया है। पशु शब्द प्रयोग किया है, पशु शब्द। अविद्योपाधिको जीव, इसका अर्थ तो आपको स्पष्ट हो गया है, इस श्लोक का अर्थ ये बिल्कुल स्पष्ट है। तीन चीज आपके सामने हैं, चेतना के तीन वर्ग हैं, एक मूल चेतना, एक मूल चेतना जिसको ब्रह्म शब्द से संबोधन किया, दूसरा मलिन चेतना जिसको जीव शब्द से संबोधन किया, जिसको ईश्वर चेतना, शुद्ध चेतना, जिसको ईश्वर शब्द से संबोधन किया। यहां जो तीन की चर्चा चल रही है वो चेतना। अविद्योपाधिको जीव मायोपाधिक ईश्वर, इसी को कई कई अनेक अनेक भाषाओं से समझाया गया है। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर, और इसी को दूसरी भाषा से समझा दिया है, परवस जीव स्ववस भगवंता, तुलसीदास जी ने। ये सेम एक ही चीज है, परवस जीव स्ववस भगवंता। हाँ, इसी को पंचदशी कार विद्यारण्य मुनि जी ने पहले प्रकरण कह दिया है। अविद्यावशगस्तु अन्य तद्वैचित्र्यादनेकधा, மாயாபிம்ப வசீகரித்த தாம் சாத் சர்வஜ்ஞ ஈஸ்வரா. வேதாந்தமே யி பிரக்ரியா மே கோய் ஃபர்க் நீ படத்தா ஹை. ஏக் ஹீ சீஜ் கோ சம்ஜானே கே லியே சப்தோ கா குச் ஹேர் ஃபேர் கர்கே சம்ஜாயேங்கே தோ பிரக்ரியா ஏக் ஹீ ஹை. ஜீவ் பன்னே கி பிரக்ரியா ஏக் ஹீ ஹை. சாய் காரிய உபாதி கஹோ, சாய் அவித்ய உபாதி கஹோ, சாய் மலின சத்த உபாதி வாலா கஹோ, பாத் ஏக் ஹீ சீஜ் ஹை. அவித்யோபாதிகோ ஜீவோ மாயோபாதிக ஈஸ்வரஹ மாயா வித்யா குணாதீதஹ இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. பிரம்ம க்யா ஹை? ஜப் மாயா ஔர் அவித்யா தோனோ உபாதி ஸே அலக் ஹோதா ஹை சேதனா, தப் வோ பிரம்ம ஹோ ஜாதா ஹை. யஹி ஜீவ கி முக்தி ஹை. அப்னி ஹி உபாதி ஸே அலக் ஹோனா, சேதனா கோ அப்னி உபாதி ஸே அலக் ஹோனா, வஹ ஜீவ கி முக்தி ஹை. எக் பார் ஹம்னே கஹா தா பஞ்சதசி கே ஸ்வாத்யாய மே ஷாயத், ஜீவாத்மா வேதாந்த வாக்கியோ கா விசார் கர்த்தே கர்த்தே அப்னே உபாதி கோ மித்யா நிச்சய கர்கே அவித்யா கா ஜப் வோ பாத் கர்த்தா ஹை, நாஷ் கர்த்தா ஹை ஜ்ஞான் கே த்வாரா, அகண்டாக்கார விருத்தி கே த்வாரா, தப் வஹ நிருபாதிக் சுத்த சைதன்ய மாத்ர ரஹதா ஹை, வஹி ஜீவாத்மா கி முக்தி ஹை. तो इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि जीवात्मा की उपाधि नष्ट होते ही ईश्वर की उपाधि भी नष्ट हो जाएगी, हमने ये कहा था. तो हमारे ट्रस्टी हैं स्वाध्यायी प्रकाश भाई मेहता, उन्होंने प्रश्न कर लिया था, महाराज जीवात्मा के अपनी उपाधि जीवात्मा यदि नाश करता है तो उसकी अपनी उपाधि नष्ट हो जाएगी, ईश्वर की उपाधि कैसे नष्ट होगी? जीवात्मा अपनी उपाधि अविद्या को नाश करता है, वो तो अखंडाकार ब्रह्म अखंडाकार वृत्ति के द्वारा उपाधि का नाश करेगा, तो फिर ईश्वर की उपाधि का नाश कैसे करेगा? तो हमने वहां एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे तुम कमरे के अंदर रह रहे हो, इस अंदर रहने पना को नष्ट करना होगा तो दीवार को नष्ट करना पड़ेगा, है ना? अब तुम अंदर से दीवार को तोड़ते जाओगे तो बाहर का भी टूट जाएगा अपने आप, जाएगा कि नहीं बोलो? एक ही वस्तु का तो ये दो भाग है ना. मान लो एक कोई मिरर ऐसा बनाओ, एक ही मिरर है, दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन पड़े, मिरर शीशा दोनों तरफ से ऐसा बनाओ, उधर से बाहर से देखो तो भी मिरर बने, अंदर से देखो तो भी मिरर है. अब अंदर वाला उस मिरर को तोड़ेगा तो बाहर का अपने आप ही टूट जाएगा कि नहीं? तो बाहर वाला ईश्वर होकर बैठा था, अंदर वाला रिफ्लेक्शन जीव होकर बैठा था, बाहर वाला रिफ्लेक्शन ईश्वर होकर बैठा था. वो जो मिरर की दीवार तुम तोड़ दोगे तो ना अंदर वाला जो रिफ्लेक्शन हट जाएगा, बाहर का भी हट जाएगा. ईश्वर की उपाधि एक ही तो है, खाली नाम का फर्क है, अविद्या को हो चाहे माया को हो, एक ही वस्तु का दो भाव है. किसी करेंसी रुपया का एक तरफ का अशोक का भाग फाड़ रोके तो गांधी की खोपड़ी रहेगी। एक ही नोट में दो तरफ, एक तरफ अशोक का वो स्तंभ है ना, लोगो है, और एक तरफ गांधी जी का चेहरा है कि नहीं बोलो। अब तुम यदि अशोक के उसके भाग को हम फाड़कर फेंक देंगे कहोगे तो गांधी का भाग भी चला जाएगा। एक ही कागज में दो भाग है, इसी तरह एक ही उपाधि में ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब, ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव, बिंब एक ही है, बिंब एक है, उपाधि एक है, फिर जीव और ईश्वर का फर्क क्या हुआ? तो बस अंतर है, यही है, एक मलिन है एक विशुद्ध है, एक अंदर का भाग है एक बाहर का भाग है। गुणातीत माया विद्या गुणातीत, माया और अविद्या दोनों से अलिप्त होने पर वो चेतना ब्रह्म ही रहेगा। इति वेदांत डिंडिम, इसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम तत्त्वं तत् परमं ब्रह्म इति वेदांत निश्चय डिंडिमः। तत्त्वं तत् परमं ब्रह्म, मूल तत्व तो वही परब्रह्म है, वही मूल परब्रह्म तत्व पहले श्लोक के व्याख्या अनुसार ईश्वर भी बना है और जीव भी बना है। उस बात को इस श्लोक के द्वारा कहते हैं वही परब्रह्म तत्व साकारम च निराकारम, साकार भी होता है और निराकार भी होता है, आकार वाला भी होता है और बिना आकार वाला भी होता है। उदाहरण के रूप में एक ही आकाश मठाकाश भी होता है और महाकाश भी होता है। मठाकाश में उसका एक आकार दिखाई पड़ेगा क्योंकि मठ के आकार ही मठाकाश का आकार हो जाएगा। मठ यदि कमरा यदि स्क्वायर का होगा तो मठाकाश कैसा दिखेगा, जबकि मठाकाश कभी स्क्वायर में हो ही नहीं सकता है। मठाकाश स्क्वायर में नहीं होगा, दीवारें स्क्वायर में हो सकती हैं, मठाकाश स्क्वायर में नहीं होगा। लेकिन मठ के स्क्वायर के चलते मठाकाश भी स्क्वायर जैसा प्रतीत होने लगा तो मठाकाश क्या हुआ, साकार हो गया, और महाकाश क्या हुआ, स्क्वायर में दिखता नहीं इसलिए वो निराकार हो गए। और चाहे साकार महाकाश माने मठाकाश हो चाहे निराकार महाकाश हो, आकाश में साकारता भी नहीं निराकारता भी नहीं, मठ के आकार से महाकाश निराकार कहा जाता है, आकार की अपेक्षा निराकार, आकाश तो आकाश है उसमें न आकार है न निराकार है। इसी प्रकार से निर्गुणम च गुणात्मकम, वही ब्रह्म तत्व उपाधियों के गुणों को लेकर वह गुणात्मक भी है और उपाधियों के गुणों को छोड़कर वह निर्गुण भी है। वास्तव में तत्व न निर्गुण है न सगुण है। तत्व सिर्फ तत्व है, निर्गुण का मतलब निर्गता गुणा निर्गुणा। तो क्या क्योंकि नियम एक ही है, प्राप्तो सत्याम तन निषेध, कोई भी चीज कुसी में प्राप्त हो तभी उसमें से उसका निषेध किया जाता है। क्या ब्रह्म में गुण प्राप्त हैं और उसका निषेध करके निर्गुण कहने जा रहे हो? पहले प्राप्त है ब्रह्म में गुण, गुण उसमें प्राप्त ही नहीं है तो फिर उसको निर्गुण निर्गत गुण परिभाषा कैसे करोगे? इसलिए सगुण कहना भी निर्गुण कहना भी केवल शब्द व्यवहार मात्र है, ब्रह्म तत्व जो है वह है। साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकं तत्त्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदांत निष्डिम्डिमः। ये श्लोक बड़ा विचित्र का आ रहा है। द्विजत्वं विद्यानुष्ठानात् विप्रत्वं वेदपाठतः ब्राह्मण्यं ब्रह्म विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिम। आप लोगों को अप्रिय न लगे एक सत्य बात मैं कह देता हूं। आप लोगों में से यहां बहुत लोग वैश्य वर्ग के भी होंगे, है ना? बहुत से लोग क्षत्रिय वर्ग के भी होंगे, अन्यथा नहीं लेना, कुछ शूद्र वर्ग के भी होंगे, कोई आपत्ति नहीं है। प्रेमपुरी आश्रम ने कोई ऐसा नियम तो नहीं बनाया है कि शूद्र का प्रवेश नहीं है, होंगे, वेलकम, आने में कोई आपत्ति नहीं है। और शायद कुछ ब्राह्मण वर्ग के भी होंगे। मीमांसा इस चीज को बड़ा ध्यान देता है। किस चीज को? वर्णाश्रम को। हाँ, इसीलिए कौन सा कर्म कौन वर्ण करे ये मीमांसा का विषय है। अमुक यज्ञ खाली ब्राह्मण ही कर सकता है और नहीं कर सकते, अमुक यज्ञ क्षत्रिय ही कर सकता है अमुक और नहीं कर सकते, अमुक यज्ञ वैश्य ही कर सकता है और लोग नहीं कर सकते। जो वैश्य कर सकता है ब्राह्मण नहीं कर सकता है, जो ब्राह्मण कर सकता है वैश्य नहीं कर सकता है। ये वेद मीमांसा का बड़ा सख्त अनुशासन है। और ये बात अलग है कि आज हम सब लोग का कर्म सांकर्य कर रहे हैं तो वर्ण भी सांकर्य हो रहा है। अब ये कहने जा रहे हैं कि हम शूद्र होकर ब्राह्मण जो कर्म करेगा वो क्यों नहीं कर सकते? तुम जबरदस्ती कर लो, शास्त्र ले, शास्त्र तुम्हें वो कर्म करने पर भी है, समाज तुम्हें पारिश्रमिक दे सकता है, शास्त्र तुम्हें पारितोषिक नहीं दे सकता। ख्याल रखो। कोई शूद्र होकर वेद के विधान अनुसार वैदिक कर्म ब्राह्मण कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? करके जबरदस्ती करने जाओगे, समाज तुमको पारिश्रमिक दे सकता है लेकिन शास्त्र तुम्हें पारितोषिक नहीं दे सकता है। हाँ, शास्त्र का अनुशासन अपनी जगह पर है, सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह पर है, शास्त्र अनुशासन अपनी जगह पर है। शास्त्र समाज के अनुसार नहीं चलता, समाज को शास्त्र के अनुसार चलना पड़ता है तभी जाकर फल मिलेगा। मरने के बाद कोई शूद्र, मैंने ब्राह्मण कर्म किया है मुझे वे फल मिलना चाहिए, तो शास्त्र क्या कहेगा, तुझे ये कर्म कर करके किसने कहा, तो क्या जवाब देगा वो, बोलो क्या जवाब देगा वो। शूद्र यदि कहे मैं शूद्र योनि में पैदा होने पर भी मैंने ब्राह्मण के द्वारा करने योग्य कर्म किया, मुझे ये फल मिलना चाहिए, तो जब शास्त्र यदि कहेगा कि वो कर्म कर तुमको किसने कहा, वो क्या कहेगा, शास्त्र ने कहा कहेगा, गुरु ने कहा कहेगा, आचार्य ने कहा कहेगा, ईश्वर ने कहा कहेगा, क्या कहेगा, मेरी इच्छा से कहेगा कि नहीं। और यदि तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो तो स्वेच्छाचारी हो गया कि नहीं, शास्त्र दंड देगा कि नहीं, शास्त्र अनुशासन अपनी जगह पर है। हाँ, ब्राह्मण होकर व्यापार करो, ध्यान देना हो, ब्राह्मण होकर व्यापार करो ये तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर है। शास्त्र ने तुम मरने के बाद पूछेगा, हमने व्यापार किया है, दान किया है, अच्छा भाई व्यापार किया है तो कितना पैसा कमाया, खूब व्यापार किया खूब पैसा कमाया, वो पैसा कहां चला गया, बोले वो तो वहीं छूट गया, कहेगा कि नहीं वो, बोलो। कोई ब्राह्मण व्यापार करेगा कोई पैसा कमाएगा, मरने के बाद हम ब्राह्मण होकर भी व्यापार किया है, पैसे का काम किया है, तो बोले तूने व्यापार किया तो पैसा कहां है, बोले मारा पैसा तो वहीं छूट गया है, तो उस पैसा को भोगने के लिए जा, वहीं वैश्य बनकर जा। बोले हाय मैं ब्राह्मण हूं फिर वैश्य बना, तो व्यापार क्यों किया था, वासना तो तुम्हारी वैश्य की रही, तो जाओ वैश्य, वो पैसा जाओ वहीं छोड़कर आएगा ना, भोगो। लेकिन परमात्मा पूछेगा तूने व्यापार कर करके किसने कहा, शास्त्र ने तो नहीं कहा है, शास्त्र ने तो ये कहा है कि तुम ब्राह्मण होकर पैदा हुए हो तो वेद पढ़ो और पढ़ाओ। गीता में विभाजन है कि नहीं, बोलो, कर्म विभाजन, वर्ण विभाजन, गुण कर्म विभाग हो, तो किसके द्वारा कौन सा कर्म करना चाहिए जो शास्त्र का अनुशासन है, उसको छोड़कर हम यदि अपनी मर्जी से करते हैं तो क्या स्वेच्छाचारी नहीं कहलाएगा, तो उसका फल फिर हम परमात्मा से मांगने क्यों दावा कर रहे हैं। अस्तु, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम।